आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज से हुई शुरू। रेलवे ने चलाई एग्जाम स्पेशल ट्रेनें। नेपाल में 43 भारतीयों को लेकर जा रही बस नदी में गिरी। हादसे में 26 लोगों की मौत। बचाव और राहत कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। अयोध्या में श्री रामलला को पिछले वित्तीय वर्ष में दान में मिले 363,34,00,000 रूपये। बीते 4 वर्षों में प्राप्त हुआ 20 किलो सोना और 13 क्विंटल चांदी। और आज देश में मनाया जा रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रदेश भर में आयोजित हुए कार्यक्रम। लखनऊ में इसरो के वैज्ञानिकों ने दिए व्याख्यान। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा के लिए 67 जिलों में कुल 1,174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज 23 अगस्त के बाद 24 अगस्त, 25 अगस्त, फिर 23 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी। इसमें कुल 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षाएं 2 पालियों में हो रही हैं। परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न प्रदेशों से अभ्यर्थी आ रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। वहीं रेलवे की ओर से परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। लखनऊ से मुरादाबाद वाया बरेली एग्जाम स्पेशल ट्रेन संख्या 04259 रात 8:30 बजे लखनऊ से चलेगी। इसके अलावा लखनऊ से वाराणसी वाया अयोध्या कैंट एग्जाम स्पेशल ट्रेन संख्या 04270 लखनऊ से रात 8 बजे चलेगी। लखनऊ से वाराणसी कैंट वाया रायबरेली प्रतापगढ़ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से रात 8 बजे चलेगी। परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पेपर लीक होने की कोई भी सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहां से सेंटर पे पहुंचाना, यहां बच्चों का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आरक्षी भर्ती को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसटीएफ ने गोरखपुर के बांसगांव थाना में एक महिला सिपाही समेत 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इनके मोबाइल से दूसरे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। पुलिस गहनता से इन लोगों से पूछताछ कर रही है। नेपाल के तमहुन जिले में आज दोपहर एक बस के नदी में गिर जाने से 26 लोगों की मौत हो गई। ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। पुलिस के मुताबिक बस में 43 भारतीय नागरिक यात्रा कर रहे थे। घटनास्थल पर 10 गोताखोरों की एक टीम तैनात की गई है। सेना, पुलिस और एपीएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। हादसे में बचाए गए 12 लोगों को इलाज के लिए काठमांडू पहुंचाया गया है। वहीं अन्य का इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है। बस में महाराष्ट्र के कई यात्री भी सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए एसडीएम महाराजगंज को घटनास्थल पर भेजा है। राहत आयुक्त जीएस नवीन नेपाल सरकार के अधिकारियों से बात की है। नेपाली अधिकारियों से पोस्टमार्टम में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सुबह उपराष्ट्रपति के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वहीं उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की भी प्रशंसा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 3 माह की जेल और 1500 रूपये जुर्माने के दंड पर रोक लगा दी है। श्री सिंह को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सड़क जाम करने और लोगों को भड़काने के मामले में ये सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह विचारण अदालत के सामने 50,000 रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करेंगे और ये अंडरटेकिंग देंगे कि इस केस की सुनवाई के समय वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि श्री सिंह को ऐसा करने पर ही उन्हें आदेश का लाभ मिलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। अयोध्या में श्री रामलला को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक दान में 363 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये धनराशि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर में चढ़ावे और व्यय का लेखा जोखा पेश होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोगों ने 53 करोड़ रुपए चेक या नकद के रूप में ट्रस्ट के काउंटर पर जमा किए हैं। मंदिर के दान पात्र में 24 करोड़ 50 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। विदेश में रहने वाले राम भक्तों ने 10 करोड़ 43 लाख रुपए समर्पित किए हैं, जबकि बैंक में जमा 2600 करोड़ रुपए के ब्याज स्वरूप अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 204 करोड़ रुपए मिले हैं। बैठक में ये भी स्पष्ट किया गया कि इस वित्तीय वर्ष में राम मंदिर के निर्माण में 670 करोड़ रुपए और अन्य मदों में 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल 850 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। ट्रस्ट के महासचिव के मुताबिक बीते 4 वर्षों में ट्रस्ट को 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना प्राप्त हुआ है। बैठक में शामिल हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नीपेन्द्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण 90% पूरा हो चुका है। इसके बाद द्वितीय तल और शिखर का निर्माण समय से पूरा करने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि द्वितीय तल के गर्भगृह को विशेष बनाने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं।
द्वितीय तल का किस प्रकार गर्भगृह में किस महत्व, किस लक्ष्य, किस संदेश के साथ चीजें वहाँ की जाए, यह विचार भी है। अभी इस पर विचार चल रहा है, कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह प्रयास अवश्य होगा कि द्वितीय तल के गर्भगृह में भी भगवान राम से संबंधित विभिन्न प्रदेशों में भगवान राम पर जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, ऐसा लिखा जाए, और अन्य प्रदेशों में अन्य भाषाओं में जो इस प्रकार की रामायण को, जो रामचरित्र को वहाँ की भाषा से बता सके, उसकी जो सबसे पुरानी पुस्तक हो उसको प्राप्त करके वहाँ रखा जाए।
पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। लखनऊ में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने विज्ञान भवन में छात्रों के लिए क्विज, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष दिवस पर व्याख्यान भी दिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के निदेशक डॉक्टर डीके श्रीवास्तव ने बताया कि ये दिन छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा करने और उन्हें रोल मॉडल प्रदान करने के लिए समर्पित है।
नेशनल स्पेस डे का आयोजन पूरे देश में एक साथ मनाया जा रहा है। इस फील्ड में हमने एक अलग पहचान बनाई है, उसके अचीवमेंट के लिए हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं। हम इसमें बच्चों को इन्वॉल्व किए, हम लोगों की सोच थी कि इसरो के इसमें वैज्ञानिकों ने भी प्रतिभा किया है। हमारे रिक्वेस्ट पे आए हुए हैं इसरो बंगलौर से 2 वैज्ञानिक, डॉक्टर अहमद हसन, डॉक्टर राजीव कुमार, और हमारे यहाँ क्षेत्रीय वैज्ञानिक भी, हमारे डॉक्टर अनिल देवनियाल साहब ने भी यहाँ प्रतिभा किया। और बच्चों को अगर हम लोगों ने टारगेट किया, यही सोच कि आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को अगर मोटिवेट करने में सफल रहे, हम उनको स्पेस टेक्नोलॉजी में और आगे ला सकते हैं और अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं।
लखनऊ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने गोमती नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक रत्न संजय ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज से हुई शुरू। रेलवे ने चलाई एग्जाम स्पेशल ट्रेनें। नेपाल में 43 भारतीयों को लेकर जा रही बस नदी में गिरी, हादसे में 26 लोगों की मौत, बचाव और राहत कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। अयोध्या में श्री रामलला को पिछले वित्तीय वर्ष में दान में मिले 363,34,00,000 रुपए। बीते 4 वर्षों में प्राप्त हुआ 20 किलो सोना और 13 क्विंटल चांदी। और आज देश में मनाया जा रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रदेश भर में आयोजित हुए कार्यक्रम, लखनऊ में इसरो के वैज्ञानिकों ने दिए व्याख्यान। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।